ये रेडियो नेपाल है। अब मुकेश कुमार मिश्र से सुनिए हिंदी में समाचार। आरंभ में मुख्य समाचार। नेकपा माओवादी केंद्र की केंद्रीय समिति हुई भंग, आगामी मार्गशीर्ष में विशेष महाधिवेशन करने का किया निर्णय। देश के अधिकतर मुख्य राजमार्गों के मलबे को हटाकर यातायात हुआ सुचारू। दशहरा दीपावली लगाए त्योहारों के छुट्टियों में भी नियमित सेवाएं प्रदान करने का स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मंत्रालय ने अस्पतालों को किया निर्देश। और गजा में इसराइल के हमले में कम से कम 47 लोगों की हुई मौत। अब समाचार विस्तार से। नेकपा माओवादी केंद्र ने वर्तमान केंद्रीय समिति को भंग कर आगामी मार्गशीर्ष में विशेष महाधिवेशन करने का निर्णय किया है। राजधानी के प्रज्ञा भवन में संपन्न केंद्रीय समिति बैठक में महाधिवेशन आयोजक समिति के संयोजक की जिम्मेदारी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचंड को देने का निर्णय किया है। वहीं मौजूदा केंद्रीय सदस्य आयोजक समिति के सदस्य होंगे। ये जानकारी प्रवक्ता अग्निप्रसाद सापकोटा ने दी। साथ ही उन्होंने ये भी बताया कि महाधिवेशन में जिन जेड युवाओं की अधिकतम सहभागिता के लिए वातावरण तैयार किया जाएगा। माओवादी ने पार्टी के नेताओं की संपत्ति विवरण की छानबीन के लिए आयोग गठन का निर्णय भी किया है। इस निष्कर्ष के साथ कि राष्ट्रीय स्वाधीनता और लोकतंत्र गंभीर संकट में है, माओवादी केंद्र ने समाजवादी मोर्चा में मौजूद दलों के बीच ध्रुवीकरण की प्रक्रिया को आगे बढ़ाने और साझा विचार वालों के साथ सहकार्य करने का निर्णय किया है। सड़क विभाग ने दशहरे में काठमांडू घाटी से बाहर जाने और घाटी में आने वाले यात्रियों के लिए रास्ते सहज होने की बात कही है। विभाग ने कहा है कि देश के अधिकतर मुख्य राजमार्गों पर भूस्खलन से जमा हुए मलबे को हटाकर सुधार के काम शुरू हो गए हैं, इसलिए यात्रियों को अब तकलीफ नहीं झेलनी पड़ेगी। बता दें कि पृथ्वी अरनिको लगायत मुख्य राजमार्गों पर आए भूस्खलन के कारण पिछले दिनों यात्रियों को बेहद तकलीफें उठानी पड़ी थीं। विभाग के प्रवक्ता प्रभात कुमार झा ने कहा कि अब अगर बड़ी बारिश नहीं हुई तो समस्या नहीं होगी। बहरहाल चार राजमार्ग पूरी तरह और 171 राजमार्ग सिंगल लेन संचालित हैं। स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मंत्रालय ने दशहरा दीपावली लगाए त्योहारों की छुट्टियों में भी अस्पताल संचालित रखने का निर्देश किया है। मंत्रालय के सहसचिव एवं प्रवक्ता डॉ प्रकाश बुढ़ाथोकी द्वारा आज जारी किए गए बयान में ऐसा निर्देश किया गया है। बयान में कहा गया है कि दशहरा, यमपंचक, छठ जैसे त्योहारों में लंबी छुट्टियां होती हैं, लेकिन इस दरमियान भी मरीजों को लंबी प्रतीक्षा करने की नौबत नहीं आनी चाहिए। मंत्रालय ने उपलब्ध जनशक्ति और स्रोत साधनों का व्यवस्थित उपयोग करते हुए अपनी अपनी स्वास्थ्य संस्थाओं से छुट्टी के दिनों में भी नियमित अत्यावश्यक इमरजेंसी सेवाओं के साथ ही शल्य क्रियाओं की सेवाएं भी हमेशा की तरह मुहैया कराने का संबंधित सभी से अनुरोध किया है। सरकार ने संयुक्त राष्ट्र संघीय पूंजी विकास कोष और विश्व वातावरण सुविधा से प्राप्त लगभग 1,52,00,000 अमेरिकी डॉलर की अनुदान सहायता स्वीकार करने का निर्णय किया है। सरकार ने विश्व खाद्य एवं कृषि संगठन के माध्यम से प्राप्त लगभग 88,00,000 अमेरिकी डॉलर, विश्व वातावरण सुविधा से संयुक्त राष्ट्र खाद्य एवं कृषि संगठन के माध्यम से प्राप्त 22,42,000 डॉलर और संयुक्त राष्ट्र संघीय पूंजी विकास कोष से प्राप्त 41,90,000 अमेरिकी डॉलर बराबर की अनुदान सहायता स्वीकार करने का निर्णय किया है। अश्विन 9 गते को हुई मंत्रिपरिषद की बैठक के निर्णयों को सार्वजनिक करने के लिए आज संचार तथा सूचना प्रविधि मंत्रालय में आयोजित पत्रकार सम्मेलन में संचार तथा सूचना प्रविधि मंत्री जगदीश खरेल ने बताया कि सरकार ने राजकोष से निवेश किए गए प्रतिष्ठानों, बोर्डों, समितियों तथा सार्वजनिक संस्थान आदि निकायों के पदाधिकारियों और कर्मचारियों के पारिश्रमिक तथा सेवा सुविधाओं में एकरूपता बनाए रखने के संबंध में सुझाव देने वाले कार्यदल की कार्यावधि 45 दिन और बढ़ा दी है। इसी तरह मंत्रिपरिषद की बैठक ने महानगरपालिका और उपमहानगरपालिका क्षेत्र में एक बार में 3 करोड़ रूपये से अधिक के घर जमीन के कारोबार करते समय अनुमति पत्र लेने की व्यवस्था से संबंधित सूचना नेपाल राजपत्र में प्रकाशित करने, नेपाल सरकार मंत्रिपरिषद की राजनीतिक, आर्थिक तथा पूर्वाधार, प्रशासन, विधेयक और सामाजिक समितियों का गठन करने सहित अन्य निर्णय किए हैं। ये जानकारी सरकार के प्रवक्ता एवं संचार मंत्री जगदीश खरेल ने दी। संचार तथा सूचना प्रविधि मंत्री खरेल ने जेन जेड प्रदर्शन में घायल हुए लोगों से मुलाकात की है। त्रिवी शिक्षण अस्पताल में इलाज करा रहे घायलों और उनके अभिभावकों से मंत्री खरेल आज मिले। अस्पताल पहुंचकर घायलों की स्वास्थ्य स्थिति के बारे में चिकित्सकों से जानकारी लेते हुए उन्होंने इलाज में कोई कमी न रखने का आग्रह किया। मंत्री खरेल ने जेन जेड प्रदर्शन की घटना के संदर्भ में बनी सरकार द्वारा शहीदों और घायलों की मांगों के अनुसार कार्यवाही करने की प्रतिबद्धता भी जताई। गृह मंत्रालय ने पिछले भाद्र 23 और 24 को प्रदर्शन के दौरान काठमांडू सहित देश के विभिन्न हिस्सों में सुरक्षा बलों के साथ से गायब हथियार मिलने पर सौंपने का अनुरोध किया है। गृह मंत्रालय के प्रवक्ता आनंद काफले के अनुसार देश के विभिन्न हिस्सों में सुरक्षा बलों के साथ से गायब हथियार और सामान अगर किसी को मिलता है तो नजदीकी सुरक्षा एजेंसी में इसे इसी आश्विन मास के अंत तक सौंपने का अनुरोध किया है। इस दरमियान हथियार और सामान सौंपने लाया जाता है या इसकी जानकारी दी जाती है तो ऐसे व्यक्ति का उचित सम्मान किया जाएगा, ये जानकारी भी मंत्रालय ने दी। समाचार आप रेडियो नेपाल से सुन रहे हैं। बस थोड़ी देर विज्ञापन।
नेपाल टेलीकॉम को 4G भिडियो कल गर्दा नो बोर जी नेपाल टेलीकॉम को 4G
सबैको यो विश्वास हो नि नेपाल टेलीकॉम को 4G
गेम खेल्दा नि टेन्सन नो जी नेपाल टेलीकॉम को 4G आफ्नो भन्ने आफ्नै हो जी नेपाल टेलीकॉम को 4G
नेपाल टेलीकॉम राष्ट्रको संचार।
अब बाकी समाचार। देश के 28 जेलों और 9 सुधार गृहों से भागे 14,549 कैदियों और बंदियों में से अब तक 8,054 व्यक्ति जेलों में वापस लौट चुके हैं, ये जानकारी कारागार व्यवस्थापन विभाग ने दी है। विभाग के निर्देशक चोमेंद्र न्योपाने के अनुसार जेलों से भागे 7,713 और सुधार गृहों से भागे 341 व्यक्ति वापस आ चुके हैं। उनके मुताबिक अभी भी 6,494 कैदी और बंदी फरार हैं। फरार होने वालों में जेलों से भागे 5,872 और सुधार गृहों से भागे 622 व्यक्ति शामिल हैं। निदेशक न्योपाने ने बताया कि उनकी तलाश जारी है। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने सुरक्षाकर्मियों का मनोबल उच्च बनाए रखते हुए शांति सुरक्षा की स्थिति को मजबूत और सुशासन के मुद्दे पर गंभीर बनने का आग्रह किया है। आयोग के प्रवक्ता डॉ टीकाराम पोखरेल द्वारा आज जारी की गई प्रेस विज्ञप्ति में आगजनी और तोड़फोड़ वाली सरकारी संरचनाओं के पुनर्निर्माण पर विशेष ध्यान देते हुए शांति सुरक्षा और सुशासन के मुद्दे पर गंभीर बनने का आग्रह किया गया है। ऊर्जा जल स्रोत तथा सिंचाई भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात एवं शहरी विकास मंत्री कुलमान घिसिंग से नेपाल के लिए यूरोपीय संघ के राजदूत वेरोनिक लोरेंजो ने भेंट की। भेंट के दौरान रणनीतिक महत्व वाली और परिवर्तनकारी जलाशययुक्त जल विद्युत परियोजनाओं हरित ऊर्जा ऊर्जा सुरक्षा एवं दक्षता तथा ऊर्जा क्षेत्र में और सहायता जैसे विषयों पर चर्चा हुई, ये जानकारी मंत्री घिसिंग के सचिवालय ने दी। भेंट में इस बात के जिक्र के साथ कि 670 मेगावाट क्षमता वाली दूधकोशी जलाशययुक्त परियोजना का निर्माण उनकी उच्च प्राथमिकता में है, मंत्री घिसिंग ने परियोजना की वित्तीय व्यवस्था के लिए आवश्यक राशि जुटाने तथा प्रसारण एवं वितरण प्रणाली सुधारने के लिए और सहायता उपलब्ध कराने का अनुरोध किया। मौके पर राजदूत लोरेंजो ने कहा कि नेपाल के ऊर्जा क्षेत्र में और सहयोग एवं सहकार्य करने के लिए यूरोपीय संघ हमेशा तैयार है। आज ही मंत्री घिसिंग से नेपाल के लिए जापान के राजदूत मायदा तोरू ने भी भेंट की। सिंहदरबार स्थित भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मंत्रालय में आज हुई इस भेंट में राजदूत तोरू ने जापान की ओर से मंत्री घिसिंग को बधाई और सफल कार्यकाल की शुभकामना दी, ये जानकारी मंत्री घिसिंग के सचिवालय ने दी। प्रधानमंत्री तथा मंत्रिपरिषद कार्यालय ने स्पष्ट किया है कि प्रधानमंत्री सुशीला कार्की के नाम से कोई भी सोशल मीडिया अकाउंट मौजूद नहीं है। कार्यालय के प्रवक्ता रविलाल शर्मा द्वारा जारी एक प्रेस विज्ञप्ति में कहा गया है कि प्रधानमंत्री के नाम से कोई भी सोशल मीडिया अकाउंट नहीं है। प्रधानमंत्री कार्यालय ने यह भी साफ किया है कि फेक आईडी चलाने या इस प्रकार के गैर कानूनी गतिविधि करने पर प्रचलित कानून के अनुसार आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। अर्थ मंत्रालय ने एकीकृत कार्यालय व्यवस्थापन प्रणाली शुरू की है। इस प्रणाली के माध्यम से इलेक्ट्रॉनिक रूप से निर्धारित आदेश एवं टिप्पणी निर्णय पत्रों का पंजीकरण और प्रेषण उपस्थिति छुट्टी एवं कार्य स्वीकृति अभिलेख प्रबंधन आदि कार्यों में अनिवार्य रूप से इलेक्ट्रॉनिक हस्ताक्षर का उपयोग करके कार्य संपादित करने की व्यवस्था की गई है। अब अंतर्राष्ट्रीय समाचार। غزہ میں اسرائیل کے حملے میں کم سے کم 47 لوگوں کی موت ہوئی ہے. اسرائیلی سینا غزہ سٹی کے بھیتر پہنچ گئی ہے اور وہاں کئی ستھانوں پر اس کی حماس لڑاکوں سے آمنے سامنے کی لڑائی ہو رہی ہے. گروار کو اسرائیلی کارروائی میں غزہ سٹی سمیت پوری غزہ پٹی میں کم سے کم 47 لوگ مارے گئے ہیں. اس بیچ سنیکت راشٹر مہا سبھا کی بیٹھک میں بھاگ لینے کے لیے اسرائیلی پردھان منتری بنجامن نتانیاہو نیو یارک کے لیے روانہ ہو گئے ہیں. وہ واشنگٹن جا کر امریکی راشٹرپتی ڈونالڈ ٹرمپ سے ملاقات بھی کریں گے. اس ملاقات میں غزہ میں یدھ برام کے سمبندھ میں مہتوپورن نرنے لیا جا سکتا ہے. اسی بیچ اسرائیلی وایو سینا کے لڑاکو ویمانوں نے گروبار کو یمن کی راجدھانی سنا پر حملہ کیا. ان حملوں میں ہوتی سنگٹھن کے پرمکھ سینک ٹھکانوں کو نشانہ بنایا گیا. اسرائیلی رکشا منتری اسرائیل کارٹز نے کہا کہ اسرائیلی سینا نے ہوتی کے کئی آتنکی ٹھکانوں کو نشانہ بنا کر انہیں برباد کر دیا ہے. یہ حملہ ہوتی کے اسرائیل کے ایلات شہر پر کیے گئے ڈرون حملے کے جواب میں کیا گیا ہے. ڈرون حملے میں 22 لوگ گھائل ہوئے تھے. وہیں فلسطین کے راشٹرپتی محمود عباس نے غزہ پٹی میں اسرائیل کی کارروائی کی نندا کرتے ہوئے اسے یدھ اپرادھ بتایا. سنیکت راشٹر مہا سبھا کو ویڈیو کے ذریعے سمبودھت کرتے ہوئے کہا فلسطین ہمارا ہے. فلسطینیوں کو چاہے کتنی بھی تکلیف کیوں نہ سہنی پڑے وہ غزہ میں ہی رہیں گے. امریکہ دوارا ویزا نہیں دیے جانے کے کارن رام اللہ شہر سے ویڈیو کے مادھیم سے سمبودھن میں عباس نے کہا 7 اکتوبر 2023 کو اسرائیل پر ہوئے حماس کے حملہ کا ہم سمرتھن نہیں کرتے. انہوں نے کہا کہ غزہ فلسطین کا ابھن انگ ہے. ہم وہاں شاسن اور سرکشا کی پوری ذمہ داری لینے کو تیار ہیں. حماس کی شاسن میں کوئی بھومکا نہیں ہوگی. اسے اپنے ہتھیار فلسطینی راشٹری پرادھیکرن کو سونپنے ہوں گے. ہم سشستر راشٹر نہیں چاہتے. اب موسم. اگلے 24 گھنٹوں میں کاٹمانڈو گھاٹی کا ادھکتم تاپمان 29 سے 31 ڈگری سیلسیس اور نیونتم تاپمان 18 سے 20 ڈگری سیلسیس کے بیچ رہنے کی سمبھاونا ہے. پچھلے 24 گھنٹوں میں کاٹمانڈو گھاٹی کا ادھکتم تاپمان 31.2 ڈگری سیلسیس اور نیونتم تاپمان 19.6 ڈگری سیلسیس رہا. انت میں مکھیہ سماچار ایک بار پھر. نیکپا ماؤوادی کیندر کی کیندریہ سمیتی ہوئی بھنگ. آگامی مارک شرش میں وشیش مہادیویشن کرنے کا کیا نرنے. دیش کے ادھکتر مکھیا راجمارگوں کے ملبے کو ہٹا کر یاتایات ہوا سچارو. دشہرا دیپاولی لگائے تیوہاروں کی چھٹیوں میں بھی نیمت سیوائیں پردان کرنے کا سواستھیہ تتھا جنسنکھیا منترالے نے اسپتالوں کو کیا نردیش. اور غزہ میں اسرائیل کے حملے میں کم سے کم 47 لوگوں کی ہوئی موت. ریڈیو نیپال سے پرسارت رات 10 بجے کے ہندی سماچار سماپت ہوئے. رات 11 بجے آپ سنیں گے نیپالی میں سماچار. نمسکار. شبھ راتری.